नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे, और आज हम इस अध्ययन में उन नई बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह फरीसियों और शास्त्रियों के साथ में बातचीत करते हैं। लेकिन इसके पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारे विनती है प्रभु, आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं और सीखते हैं ये हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। आप हमें से प्रत्येक से बोली और बातचीत कीजिए, हमारे जीवन को आप स्पर्श कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन निश्चित रूप से आपके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, बीमारियों में हैं। प्रभु, आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता और मदद कीजिए, ताकि वे भी आपके वचन पर विश्वास करें और जानने पाए कि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यह अध्याय मरकुस के विषय को उजागर करता है। प्रभु यीशु परमेश्वर का सेवक है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। वह एक कर्मठ व्यक्ति है जो अपने कामों द्वारा रोमियों को या उन समस्त मनुष्यों को प्रभावित करना चाहता है जो काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह यीशु के मुक्तिदाता होने के संबंध में एक अद्भुत बात है। वह मुक्ति दिला सकता है और एकमात्र वही है जो यह काम कर सकता है। मित्रों, पुरानी वाचा के अंत और नई वाचा के आरंभ के मध्य का यह समय एक ऐसा समय था जो इसराइल राष्ट्र के इतिहास में विविध घटनाओं का युग था। उनके दासत्व के समय और लौट आने के बाद यह वाचाओं का मध्यांतर ऐसा समय था जब अनेक दलों और समुदायों का उदय हुआ जिनका उल्लेख पुराने नियम में नहीं है, जैसे फरीसी, सदुकी, शास्त्री और हेरोदवादी। तो हम सबसे पहले देखते हैं शास्त्री। शास्त्रियों का आरंभ तो बहुत अच्छा था। एज्रा एक शास्त्री था, वही एक समुदाय का संस्थापक भी था। वे व्यवस्था के व्यवसायिक अर्थानुवादक थे, परंतु मसीह यीशु के समय तक वे बाल की खाल उधेड़ने वाले बन गए थे और व्यवस्था की यथार्थता को त्याग शब्दों से खेलने लगे थे। मित्रों, मेरे विचार में आज भी यही एक बड़ी समस्या है, हम नियमों को विकृत कर देते हैं। आगे हम देखते हैं फरीसी। फरीसियों का आरंभ भी अति उत्तम था। उन्होंने यहूदी प्रथा को विदेशी प्रभाव से सुरक्षित किया हुआ था। वे व्यवस्था के कट्टर पालक थे और राजनीति में वे राष्ट्रवादी थे। वे स्वर्ग के राज्य को स्थापित करना चाहते थे और वह भी इसी पृथ्वी पर। तब तीसरे समूह है सदुकी। सदुकी समुदाय में धनवान एवं समाज प्रतिष्ठित जन थे। उनमें आत्मिक गहराई नहीं थी। वे प्रथाओं से छुटकारा पाना चाहते थे। वे अलौकिक बातों में विश्वास नहीं रखते थे और फरीसियों के विरोधी थे, क्योंकि फरीसी स्वर्गिक बातों में विश्वास रखते थे। वे यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस, पंथियों की नाई, आनंदोपासक थे। आगे हम देखते हैं हेरोदियान। ये ऐसे लोगों का समुदाय था जो राजनीति के संबंध में अवसरवादी थे। वे हेरोदेस के राज्य के सामर्थक थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 1 पद, जहां पर लिखा है, तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। मित्रों, प्रभु यीशु का नाम ऐसा प्रसिद्ध हो गया था कि ये लोग यरूशलेम से गलील क्षेत्र में आए जहां यीशु प्रचार कर रहा था। वे यर्दन पार से भी आए, जो हम आगे चलकर देखेंगे। मरकुस 7 उसके 2 से 4 पद में आगे लिखा है, और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। मित्रों, यह एक रोचक बात है कि यीशु के आसपास संकट उमड़ रहा है। मरकुस 6 उसके 30 पद में हमने देखा था कि शिष्य लौटकर यीशु के पास आए और अपने कामों की चर्चा कर रहे थे। अब शास्त्री और फरीसी यीशु के पास आए हैं और यहाँ पर यीशु और उसके अनुयायी तथा फरीसी और उनके अनुयायियों में मुठभेड़ होने की संभावना दिखाई देती है। यीशु के साथ सदा ही ऐसा होता था। एक ओर वह समूह था जो उसके पक्ष में था और उसके मित्र अनुयायी, और दूसरी ओर उसके विपक्षी जो उसे स्वीकार नहीं करते थे और उससे बैर निभाते थे। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस ओर हैं। यह मुद्दा यह नहीं है कि यह कलीसिया के सदस्य हैं और अपने संस्कारों को पूरा करते हैं, परंतु यह कि यीशु के साथ आपका क्या संबंध है। यही सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतर उत्पादक विषय है। यह दल यरूशलेम से विशेष रूप से आया था। वे बुद्धिजीवी थे और उन्हें यीशु को फंसाने के लिए भेजा गया था। यीशु ने अपना प्रतिवाद कैसे दिया? मेरे लिए यह एक और प्रमाण है कि वह परमेश्वर है। किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की, यूहन्ना 7 अध्याय उसके 46 पद में हम पाते हैं। मित्रों, यह उसके बैरियों की गवाही है। वे निश्चय ही यीशु में दोष ढूंढ सकते थे क्योंकि वह बार बार उनकी प्रथाओं को तोड़ता था। उनकी प्रथा क्या थी? वे यीशु के शिष्यों से प्रथाओं को तोड़ने पर रुष्ट नहीं थे। उनकी समस्या तो यह थी कि यीशु उन्हें पुराने व्यवस्था की प्रथाओं के चलन पर बाध्य नहीं करता था। यह विषय था पारंपरिक शोधन का, स्वच्छता का नहीं। मित्रों, मार्कुस रोमियो के लिए स्पष्ट करता है कि यह इसराइल की एक प्रथा थी। परमेश्वर ने इसराइल को विस्तार पूर्वक शोधन नियम दिए थे जो लय व्यवस्था की पुस्तक में निहित है। मित्रों, परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि पापी मनुष्य को परमेश्वर की पवित्रता स्वाभाविकता में आने से पूर्व परिपूर्ण शोधन की आवश्यकता थी, अर्थात शुद्धिकरण की। फरीसियों ने प्रथाओं का विकास कर लिया था जो मूसा की व्यवस्था की अनिवार्यता मानी जाती थी। कुछ का तो तर्क यह था कि प्रथाएं मूसा ने व्यवस्था के साथ ही दी थी। समय के अंतराल में ये प्रथाएं व्यवस्था का भाग बन गई थी और अंत में प्रथाएं व्यवस्था के उद्देश्य से भी अलग हो गई थी। मित्रों, यहां पर कुछ प्रथाएं सविस्तार दी गई हैं। वे कटोरे, पात्र और पीतल के पात्र तथा तख्तों को संस्कारिक रूप से शुद्ध किया करते थे। यह कष्टदायक कार्य था और बाहरी दिखावा भी था। यहां शोधन के लिए जो शब्द काम में लिया गया है वह है बपतिस्मा। वे कटोरों का, पात्रों का, पूजा पाठ के सामग्री का और यहां तक तख्तों का भी बपतिस्मा किया करते थे। मित्रों, यह धर्म की एक विधि थी। मनुष्य संस्कारों में ऐसा लीन हो जाता है कि वह उद्देश्य से ही भटक जाता है। इन कृत्यों का मूल उद्देश्य यह था कि परमेश्वर के संबंध में आने से पूर्व मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के समक्ष उचित या स्वीकार योग्य ठहराए। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ऐसे अनेक जन हैं जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में विवाद करते हैं, जबकि मसीह यीशु हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं मरकुस 7 उसके 5 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा कि तेरे चेले क्यों पुरनियों की रीति पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। शिष्यों पर दोष लगाना तो एक बहाना था, उनका निशाना यीशु था। देखिए, यीशु का उत्तर कोमल नहीं था। मार्कुस 7 उसके 6 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मित्रों, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद कपटी किया गया है वह शब्द मंच कलाकारों द्वारा नाटक करने के लिए काम में लिया जाता था। अतः कहने का अर्थ यह हुआ कि उनका धार्मिक अनुष्ठान अर्थहीन प्रदर्शन था, उनमें वास्तविकता का अनुभव नहीं था। या वैसा ही हुआ जैसा पुतली का नाटक। व्यक्ति का होंठ अलग और उसका मन अलग होता था। मेरे मित्रों, आज आराधनालयों में भी अनेक जन केवल नाटक करते हैं। यदि आराधना को यथार्थ रूप देना है तो उसमें मन लगाना आवश्यक है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियों के पत्र 10 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम इसे पाते हैं। आज विश्वासी विश्वास वचन, अंगीकार वचन, विशेष परिधान आदि में खो जाते हैं। यह एक प्रकार से प्रथा पत्र ही हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह से उनका सीधा संबंध समाप्त ही हो जाता है। मित्रों, हम मरकुस 7 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जिस आराधना में मनुष्य की बनाई व्यवस्था परमेश्वर के वचन का स्थान ले ले, वहां आराधना खोखली हो जाती है। अब हम विषय के मुख्य बिंदु पर आते हैं और मरकुस 7 उसके 8 और 9 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो, और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि उनकी समस्या यही थी। वे मनुष्यों की बनाई प्रथाओं को परमेश्वर के वचन के स्थान पर ले आए थे। प्रथाएं अच्छी होती है और भलाई के लिए बनाई जाती है, परंतु जब वह परमेश्वर के वचन का स्थान ले ले तो दुष्टता में बदल जाती है। समय के अंतराल में इसराइल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे मित्रों, मेरे विचार में आज अनेक कलीसियाओं का परमेश्वर के वचन से दूर हो जाने का कारण यही है। उन्होंने मनुष्य के विचार और प्रथाओं को परमेश्वर के वचन से बदल दिया है, और परमेश्वर का वचन शीघ्र ही वहां से हट गया है। मरकुस 7 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। मित्रों, यीशु उन्हें उदाहरण देकर समझाता है कि उन्होंने व्यवस्था का कैसा दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वे अपने माता पिता का आदर करें, परंतु उनकी प्रथा ने उन्हें माता पिता के उत्तरदायित्व से मुक्त करने का मार्ग बना दिया था। यदि कोई अपने बूढ़े माता पिता की आवश्यकताओं में उनकी सेवा करने से बचना चाहता था तो वह अपनी संपदा मंदिर में याजक को समर्पित कर दे, जिसे कुर्बान कहते थे। उसके मरणोपरांत उसकी संपत्ति मंदिर की हो जाती थी। इस प्रकार वह अपने माता पिता के उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता था। मरकुस 7 उसके 12 और 13 पद में लिखा है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मित्रों, यीशु ने कहा कि ऐसी प्रथा अनिष्ट थी और परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में थी, जो कहती थी माता पिता का आदर कर। आज अनेक संस्थाएं हैं जिनके कार्यकर्ता दिन भर घूम घूम कर दान एकत्र करते हैं। दान देने में यही एक बड़ा संकट है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को अनदेखा करने लगता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। अब हम आगे देखते हैं कि वह शोधन का स्पष्टीकरण समझाते हैं। मरकुस 7 उसके 14 और 15 पद में लिखा है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। मित्रों, यहाँ यीशु बाहरी बातों और भीतरी बातों में अंतर समझाते हैं। वह समझाते हैं कि धर्म कोई मरहम नहीं कि दर्द मिटाने के लिए लगा लिया जाए, या कुछ खाना या नहीं खाना अर्थ नहीं रखता है। जब घर में चला गया तब उसके शिष्य आकर उससे अर्थ पूछने लगे कि इसका मतलब क्या है। हम मरकुस 7 उसके 18 से 20 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और सांडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मित्रों, आइए हम देखें कि मनुष्य के भीतर से क्या निकलता है। मार्कुस 7 उसके 21 से 23 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मित्रों, यदि आप समाचार पत्र उठाकर देखें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखेंगे कि विगत 24 घंटों में मनुष्य के भीतर से जो निकला है वह था बुरे विचार, व्यभिचार, हत्या, क्रोध भी हत्या ही है, चोरी, नौकरी पर घूमना फिरना भी चोरी है, लालच, भौतिक वस्तुओं की कामना है, दुराचार मनुष्य को दुख पहुंचाने वाला काम है, धोखा एक दिखावा है, कामुकता और घृणा, निंदा ईश्वर और मनुष्य की बुराई करना है, घमंड परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक घृणित है, मूर्खता परमेश्वर और मनुष्य के सम्मान से रहित कार्य। मित्रों, यह सब मनुष्य के मन से निकलता है और यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा, तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। मार्कुस 7 उसके 24 से 30 पद में हम आगे पढ़ते हैं, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरुफिनिकी जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया कि सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। मित्रों, यीशु अपने देश से बाहर था जब उसका साक्षात्कार इस स्त्री से हुआ। यह स्त्री सूर निवासी यूनानी पृष्ठभूमि से थी। यीशु नहीं चाहता था कि उसकी उपस्थिति प्रकाश में आए, परंतु यह संभव नहीं था। वह स्त्री बड़े विश्वास से यीशु के पास आई थी। यहां पुत्री शब्द जो बालिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता था, आरंभ में तो यीशु निष्ठुर प्रतीत होता है, परंतु हमने मत्ती के अध्ययन में देखा था कि यह एक महान सत्य का अनावरण करता है। यहां एक और महान सत्य का अनावरण है और वह चारों सुसमाचार वृतांतों की सटीकता है। मित्रों, यह स्त्री यीशु के देश से बाहर विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यीशु ने उसकी याचना सुनी और कभी कभी ऐसा लगता है कि यीशु इस स्त्री के विश्वास का उत्तर देने ही वहां आया था। हम मार्कुस 7 उसके 31 पद में पढ़ते हैं, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। मित्रों, यीशु सूर और सैदा से निकलकर गलील सागर की ओर अग्रसर होता है। मार्ग में वह दिकापुलिस से होता हुआ आता है और दिकापुलिस का अर्थ है 10 नगर जो गलील क्षेत्र में यर्दन के पूर्वी ओर बसे थे। ये 10 नगर थे इस्कुथोपोलिस, हिप्पोस, पेला, दमिश्क, गिरासेन, गदारा, रफाना, दियान, कनाना, फिलाडेल्फिया। ये 10 नगर थे जिसे दिकापुलिस कहा गया। मरकुस 7 32 से 37 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और लोगों ने एक बहरे को जो हकलाता भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्तह अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसका जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। मित्रों, मैं कहूंगा कि यह सब उसने उसके विश्वास को बढ़ाने हेतु किया था। उसकी स्थिति के कारण यीशु ने ऐसा किया था। पहले उसके कान खोले गए कि वह सुन पाए। यह सब देखने के बाद जन समूह चुप नहीं रह सकी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अर्थात इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि यीशु की सेवा सीमा पार कर गई। अब यीशु पर सेवा का बोझ मानवीय क्षमता के परे था। इसके अतिरिक्त जन समूह का दबाव, समय का तनाव, दिन भर का काम करना, थकान आदि। जन समूह कह सकता था, उसने बहुत अच्छा काम किया, हम अपनी सराहना में कहेंगे आमीन। मित्रों, वह आज भी हर काम अच्छा ही करता है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दिया है। मित्रों, इस अध्ययन में आज हमने जाना कि मनुष्य बाहर से नहीं परंतु भीतर ही से अशुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य के मन के अंदर बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, कुदृष्टि और निंदाएं भरी होती है, और इसको कोई रिन की साबुन या डिटर्जेंट पाउडर हमारे इन विचारों को साफ नहीं कर सकती है। इसे साफ करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि उसका पवित्र लोहू ही हमारे इन विचारों को बदल सकता है। और आज यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इन सारी बातों से छुटकारा पाएं, क्योंकि हम इस संसार में लोगों को देखते हैं कि लोग एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं, इतना ही नहीं बुरे विचारों के साथ उनको नाश करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे इन विचारों को बदलना चाहते हैं, हमारे अंदर में उस शांति और आनंद को देना चाहते हैं। यदि आज आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो आपसे भी प्रेम करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जा करके लोगों के बीच में अद्भुत कार्यों को कर रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को पांव और गूंगों को बोलने की शक्ति प्रदान कर रहे थे, आज भी वह आपको उसी तरह अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, आपको चंगाई प्रदान करेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो आप प्रभु यीशु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें और अपने जीवन को उसे समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि मनुष्य के अंदर हमेशा बुरे विचार होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने इन बुरे विचारों से छुटकारा पाएं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों के हरेक बुरे विचारों को उनके जीवन से आप निकाल दें और उनकी सहायता करें, ताकि प्रत्येक जीवन आपसे प्रेम कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हमारे श्रोताओं को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप प्रत्येक को आशीष दें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
Okay.